May Allah bless and keep you safe. Keep you safe. May Allah bless and keep you safe.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم has been reported to have said whoever recites once durood upon me Allah تبارك وتعالى showers 10 mercies upon that person جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے محترم اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر مینٹل ہیلتھ میٹرز کے خوبصورت سلسلے کے ساتھ ہم حاضر ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر زین قطاری، اور انشاءاللہ آج ایک منفرد ٹاپک لے کر آئے ہیں لرننگ ڈسیبلٹیز کے حوالے سے۔ لرننگ ڈس ایبلٹیز کیا ہے اور اس کے بارے میں انشاءاللہ اس کے سمپٹمز کیا ہے، کازز کیا ہے، اور پھر انشاءاللہ یہ بھی سنیں گے کہ اس کا سولوشن کیا ہے۔ بیفور وی پروسیڈ اہیڈ ٹوورڈز دی مین ٹاپک لیٹس میک فیو گڈ انٹینشنز بیکاز اٹ از اے سیئنگ آف دی پروفیٹ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ، انٹینشن آف اے بیلیور از بیٹر دین ہز ایکشنز۔ سو مائی اسلامک برادرز، وی ہیو گاٹ این انٹینشن آف ڈوئنگ دس سلسلہ، دس پروگرام از دیٹ we can spread the word of deen at the same time, the islah of the ummah, we can call towards righteousness, and hum ye niyat lekar baithe hain ki ummat ki khair khahi ki niyat se hum is silsile ko kare, jo information which is important for you to know hum aap tak pahunchaye, jo log pareshan hain, besabri ka shikar ho jate hain, pareshani ka shikar ho jate hain, unki pareshani dur ki jaye, unko kuch health tips di jaye, unko کچھ ایسے مدنی پھول دیے جائے جن کو سن کر جو ہے وہ اپنی ان پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں یا کم کر سکتے ہیں۔ تو ہماری یہی نیت ہے اس پروگرام کو آپ کے سامنے لانے کی، اللہ تعالی ہماری نیتوں کو قبول فرمائے، اور انشاءاللہ مدنی چینل اسی قسم کے پروگرام آپ کے سامنے سلسلے لے کے آتا ہے۔ تو آئیے انشاءاللہ عزوجل ہم چلتے ہیں ڈاکٹر زیرک اٹاری کی طرف جو کہ یو کے کوالیفائڈ ہے اور الحمدللہ اس پروگرام کی زینت ہے۔ انشاءاللہ ہم ان سے پوچھیں گے کہ آج کا جو ٹاپک ہے لرننگ ڈس ایبلٹیز کے حوالے سے، اور سب لرننگ ڈس ایبلٹیز آپ مجھے سمجھائیے کہ یہ اصل میں ہے کیا۔
بیسیکلی لرننگ ڈس ایبلٹیز فرسٹ آف آل از اے نیو ٹرم دیٹ دا ڈاکٹرز آر یوزنگ۔ پریویسلی اٹ یوز ٹو بی نون ایز مینٹل ہینڈی کیپ اور مینٹل ریٹارڈیشن اور گلوبل ڈیولپمنٹل ڈیلے، and I think these terms may define it a little bit better. However, the correct term in these days is learning disabilities. What it means is that the child, we are obviously talking about the children here, the child will actually have difficulty learning. What it means is learning doesn't just mean that school. As we grow, we learn to speak, we learn to walk, we learn to eat, we learn to obviously go to the toilet as well, we learn to interact with others, and obviously so all these things are part of learning. So the child who has learning disabilities, they may be slow in all of these domains, and this will actually affect their interaction with other members of the society as well. And generally speaking, parents may be able to realize that this child, if they have other children as well, is slow in every walk of life compared to their other brothers or sister or other children. So for example, they may be slow in walking, slow to talk, slow to feed themselves, slow to dress themselves, and slow in terms of educational attainments as well. Now, this encompasses what we call as learning disabilities. So, they will have a problem with learning, they will have a problem with understanding as well. And also, they will have a problem in terms of communicating their needs, and wants with others as well.
Now, sir, I just would like to stop you here because for the viewers of Madani Channel, those they can understand Urdu. उनके लिए मैं ये चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो बयान किया है और वो मदनी चैनल के नाज़रीन जो हमें सुन रहे हैं, अगर आपका बच्चा उसकी ग्रोथ उस हवाले से नहीं हो पा रही जिस तरीके से नॉर्मल दीगर बच्चों की होती है, यानी बात करने में जो है वो जैसे टॉयलेट जाते हैं उसके यूजेज के हवाले से और खाना खाने के हवाले से, चलने के हवाले से, उसकी बढ़ोतरी के हवाले से, अगर आप समझते हैं उसकी एजुकेशन लर्निंग के हवाले से उस तरीके से वो ग्रो नहीं कर पा रहा जिस तरीके से नॉर्मल बच्चे अदर किड्स दे डू, तो फिर ये सिलसिला आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगा, बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो आज आप मदनी चैनल की स्क्रीन के सामने बैठिए, तो इंशाल्लाह अज़्ज़वजल आपको बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है और इसके हवाले से आप किस तरीके से जो है इस इशू को बेहतर अंदाज से डील कर सकते हैं। आप इसको जरा फर्दर एक्सप्लेन कीजिए कि हमने ये तो सीखा कि इस किस्म के जो आपने कुछ पॉइंट आउट किए हैं इश्यूज, लेकिन इसकी कुछ सिवियरिटी लेवल्स भी हैं कि ये इशू किस हवाले से, इसके दर्जात भी हैं, आर देयर एनी काइंड ऑफ लेवल्स और डिग्री ऑफ दिस डिसेबिलिटी।
लर्निंग डिसेबिलिटीज ऑब्वियसली हैज बीन कैटेगराइज्ड इनटू माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड। So someone, we will start with profound level of severity. Okay. The child from day one, and no matter how old they are wheelchair bound, they're not able to walk, they're not able to talk, they're not able to feed themselves at all. So this child is simply either bed bound or wheelchair bound. They need someone's help all the time to maintain their physical existence. So this is profound level of learning disability. And if we look at in terms of IQ tests, because this is another method of identifying in what we call as an objective manner, there is a test called IQ test. So if a child scores less than 20 on an IQ test, then that child has actually got profound level of learning disabilities. In severe level of learning disabilities, the score on the IQ test will be somewhere from 20 to 34. But in terms of functioning disability, so this child may not be as bad as, so for example, they may be able to walk with help or with aid, they may be able to obviously sit up follow some basic instructions as well, but again they require other people's full help to actually maintain their existence as well. So this is a severe level of learning disability. Or what we can say is that both children who have severe or profound learning disabilities, they cannot actually sustain independent living. Right. And they are both heavily dependent upon another person. So whether it comes in terms of feeding, they will require feeding. When it comes to obviously cleaning, they will require someone to actually change their nappies and so forth. So it is a bit like a few months old child that you have, who needs all the support and help to maintain their daily living. Then we come to obviously moderate level. Basically, moderate level of learning disability, if we look at the score on the IQ test, then this will maybe anywhere between 35 to 50. These individuals, they can have some form of independent existence, but they will need some support. They may be able to have some level of speech as well, but it may be difficult for them, for others to understand. They may find it difficult to express their needs and so forth, but they may be walking. They may be able to sort of like feed themselves to some extent. They may be able to sort of like put their clothes on to some degree, but they again are dependent upon others to be around them to maintain their safe existence. If you leave them on their own, they will not be able to do their activities of daily living independently. However, they may be able to walk, they may have some level of speech as well, they may have a fair amount of understanding, even though they may not be able to express themselves, and basically with them, they may be able to go to school and have some education and so on and so forth. They may be able to attend family gatherings, but clearly others will notice that this child is not normal. Then we come to the mild level of learning disabilities. If we talk about the score on the IQ test, then their score is anywhere between 50 to 69, 50 to 70. The normal IQ score is 70 plus. So anyone above the score of 70, then you can say that they are normal. There may be obviously someone who scores 75 may not be as bright as someone who scores 100. But they may not have learning disability. So learning disability is purely in this day and age restricted to these scores, although these scores may change. Someone who's got mild learning disabilities, if they are given the right training, they get the right help, then they can to an extent maintain or achieve independent living. However, they may still be vulnerable. They may be what we class them as simple individuals.
If you would summarize so far what you have discussed for our viewers and listeners who could understand Urdu.
Learning disabilities ke hawale se humne mukhtalif iske darajat wo bataye ke ab zahir hai ke main English ke lafz use karunga mild, moderate, severe, profound. Profound jo hai na sabse worst jo darja learning disability ka hota hai ke wo jaise bechara bachcha ek 2-3 maah ka hota hai na wo pada hua hai use koi hosh nahi hai. व्हील चेयर में पड़ा हुआ है या बेड में पड़ा हुआ है, ना तो वो खा सकता है ना पी सकता है ना जो है वो अपने जो है वो कपड़े बदल सकेगा, भाई उनका
डिपेंडेंट होता है किसी
जी बिल्कुल कम्प्लीटली डिपेंडेंट होता है। और अगर आईक्यू एक टेस्ट डॉक्टर करते हैं कि इसकी जहनी कैपेसिटी कितनी है, तो अब उनकी जहनी कैपेसिटी आईक्यू टेस्ट स्कोर पे वो 20 से कम ही उनका स्कोर होगा। अब इसका मतलब ये होगा कि उन्हें ज्यादातर चांसेस ये है कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है उन्हें कोई खबर पता कुछ भी नहीं होगा। सर्दी है, गर्मी है, मतलब खुशी है, उदासी है, गमी है, इन चीजों का उन्हें कोई किसी तरह एहसास या वो नहीं होगा। तो ये जो प्रोफाउंड लेवल ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज है। फिर सीवियर लेवल ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी पे आते हैं तो उसमें उनका आई क्यू टेस्ट स्कोर अगर देखा जाए तो 20 से जो है वो 34 तक 35 तक होगा। और अगर उनके फंक्शनिंग के हवाले से देखा जाए तो अगेन ये भी जो है ये डिपेंडेंट होंगे, कम्प्लीटली डिपेंडेंट होंगे ऑन समवन एल्स। लेकिन हो सकता है कि ये थोड़ा देखने में लगे कि उतना सीवियर नहीं है जितना प्रोफाउंड की लर्निंग
दर्जा है और ये जो है थोड़ा सा उससे कम दर्जा है।
दोनों प्रोफाउंड और सीवियर, इन दोनों को नॉर्मल अपनी जिंदगी की जो है जरूरियात पूरी करने के लिए किसी की 24/7 जरूरत पड़ती है। उनके बगैर जो है वो इनकी जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इनको खाना खिलाने में हेल्प चाहिए होगी, कपड़े बदलने में हेल्प चाहिए होगी, सफाई के हवाले से हेल्प चाहिए होगी, ये यानी कि टॉयलेट के हवाले से बिल्कुल यूं समझे कि जैसे बच्चे को नैपी पहनाई जाती है तो इसी तरह इनको नैपी जो है वो पहनाने की हाजत पड़ेगी। अब इसके बाद मॉडरेट लेवल ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी पे अगर आए, आईक्यू टेस्ट के हिसाब से देखें तो 35 से 50 तक जो है इनका आईक्यू टेस्ट होगा। ऐसे बच्चे इनको अंडरस्टैंड होगा, दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग अराउंड देम, एहसास होगा ये क्या हो रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो इसको एक्सप्रेस कर सके ये जबान के जरिए। बोल सकते होंगे लेकिन हो सकता है किसी दूसरे को सही तरह से समझ ना आए, अपनी नीड्स जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। इन्हें भी हेल्प तो चाहिए होगी, इंडिपेंडेंट जिंदगी तो अपने तौर पर ये भी नहीं गुजार सकते, लेकिन इनको भी चाहिए होगा कि इनके वालिदैन इनके गिर्द हों। हो सकता है कभी पेशाब आया तो जहां है वहां पेशाब कर दिया, बोलने के हवाले से क्या कहना क्या नहीं कहना। बाज दफा ये होता है कि अब ये नहीं पता कि मुझे यहाँ कपड़े पहने रखने हैं या उतार देने हैं, इसी तरह मतलब जो है वो दीगर चीजें कि भाई मुझे यहाँ क्या करना है क्या नहीं करना। तो इनको भी चाहिए कि बंदा इनके इर्द गिर्द कोई ना कोई हो, स्पीच में हो सकता है कुछ बोल सकते हूँ, वॉक कर सकते हूँ, खाने पीने में हो सकता है कि कुछ बेसिक तौर पर अपने तौर पर कर लेते हूँ खाने पीने के हवाले से, लेकिन अगेन इनको जो है वो इसमें दूसरों की हेल्प चाहिए। अब फिर आता है कि माइल्ड लेवल ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसमें आई की टेस्ट के हिसाब से देखा जाए तो ये 50 से 70 तक होता है आई क्यू टेस्ट स्कोर, लेकिन फंक्शनिंग के एतबार से देखा जाए तो अब अगर इनकी, क्योंकि इनकी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है, ये कुछ ना कुछ लर्न कर सकते हैं, और अगर ऐसे बच्चों को अच्छे तरीके से सिखाया जाए तो कुछ हद तक, बल्कि ज्यादा चांसेस हैं कि ये अपनी इंडिपेंडेंट लिविंग जो है वो गुजार सकते हो, लेकिन थोड़ी सी रहनुमाई इन्हें भी चाहिए होती है। ये थोड़े सीधे साधे होते हैं, रिस्क होता है कि दूसरे लोगों की बातों में आ जाएंगे, कोई इनके फाइनेंशियली हो सकता है बेनिफिट, मतलब एडवांटेज ले ले, माली तौर पर कोई नुकसान पहुंचा दे, जिस्मानी तौर पर नुकसान पहुंचा दे, धोखा इनसे कर ले, इन्हें पता नहीं चलेगा। लेकिन ये है कि अपने तौर पर खाना पीना, सोना, कपड़े पहने, टॉयलेट जाना, ये ट्रेनिंग के साथ ये बच्चे भी जो है वो कर सकते हैं। तो असल में हमारा मकसद भी यही है कि जो माइल्ड या मॉडरेट है, ताकि इनके हवाले से जो है वो लोगों को पता हो कि कुछ ना कुछ हम कर सकते हैं इस बच्चे को कैसे हेल्प कर दे।
Also, when you were talking about this situation of different levels of disabilities, really, I've gone to a frame of mind. मैं उस वहाँ पे चला गया हूँ कि जहाँ मैं सोचता हूँ कि अगर हमारी भी औलाद है, अल्लाह ने हमें भी नेमत दी है, हम कितने अल्लाह तबारक व तआला के हम पर करम है कि उसने हमारे भी आज़ा सलामत रखे हैं, हमें जो औलाद दी है उनके आज़ा भी सलामत है, और हम कितनी बड़ी आजमाइश से बचे हुए हैं और इसका हमें कितना शुक्र अदा करना चाहिए। ये तो हर मदनी चैनल का नाज़िर, व्होएवर इज वॉचिंग अस ऑन मदनी चैनल, दे कुड इजीली अंडरस्टैंड हाउ थैंकफुल वी शैल बी टू अल्लाह तबारक व तआला दैट अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑल फाइन and we can walk, we can talk, and our kids, they are fine, they can walk, they can talk, and they can express themselves. But there are people, they cannot express themselves, wo apne aap ko bayan nahi kar sakte, aur wo kis tarah ki zindagi guzarte honge, aur Allah tbarak wa taala un musalmanon ko barkat ata farmaye jo apne bachchon ko is situation ke andar bhi dekh kar bhi alhamdulillah unka khayal rakhte hain, aur yahan pe ek neki ki daawat yun bhi deta chalo ki आप डॉक्टर साहब अंदाजा लगाए कि उन माँ बाप की क्या हौसला होता होगा, क्या जिंदगी होती होगी कि इन बच्चों के साथ भी उनकी शफकत, उनके साथ प्यार। और मैं तो ये समझता हूँ कि जब इस टॉपिक पे हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि दीगर बच्चे जेलस होते हैं इन बच्चों के साथ कि यार माँ बाप इनको ज्यादा तवज्जो देते हैं, और फिर जब मैं ये सोचता हूँ कि एक माँ अपने कमजोर बच्चे को ज्यादा मोहब्बत करती है तो मुझे वो 70 माओ से ज्यादा प्यार करने वाला रब याद आता है कि हम भी गुनाहगार हैं, हम भी बहुत कमजोर हैं, हम भी बड़े लातवान हैं, और इस पूरे सरजमीन पर, इस पूरे कुर्रे अर्ज पर अगर कोई कमजोर तरीन शख्स होगा तो शायद वो मैं हूँ। तो फिर उम्मीद बन जाती है, ढारस बन जाती है कि वो रब्बे करीम, जब एक माँ अपने कमजोर बच्चे से इतना प्यार करती है, उसका ज्यादा ख्याल रखती है, और उसके साथ भी जो है वो चाहती है कि ये मैं इसके साथ अच्छा बर्ताव करूँ, तो वो 70 माओ से ज्यादा प्यार करने वाला फिर इंशाल्लाह हमें भी बख्श देगा, और इसी से हमें जो है वो उम्मीद बन जाती है। तो अल्लाह ताला के साथ भी हमारा रिश्ता जुड़ना चाहिए। ये प्रोग्राम अपनी जगह पे इंफॉर्मेशन का भी बायस है, लेकिन हम चाहते हैं कि जहां जहां नेकी की दावत हम पेश कर सके तो हम वो मौका जाया ना करें। आप तो ज्यादा उन पेरेंट्स के साथ इन्वॉल्व होते होंगे, वो आपके पास आते होंगे, और किस तरीके से वो जिंदगी गुजारते हैं और कितने साबिर और शाकिर होते हैं और कैसे उनकी जिंदगी है।
They reach the age, for example, someone with mild or moderate learning disability, obviously severe and profound, everyone will know that they cannot achieve or anything. But parents will actually, initially to begin with, when a child is 5-6 years of age, yes, you will know that they are slow, but you may not be able to pick it up as profoundly, because as they are getting older and older, it will become more and more prominent that they are not able to do this and this. From Shari point of view, sometimes parents actually want their child to go to the madrasa, or they are becoming adults. So especially in terms of Islamic sisters, if a daughter is actually, she's got these problems and difficulties, so parents will actually worry about obviously their salah, their namaz, their roze, their fasting, and obviously learning the Quran, learning the namaz and so forth. Now clearly I'm not a mufti. In these cases, they need to consult with the mufti that what is the level of their understanding. Do they actually need to send this child to the masjid? Because there are sharia kaam as well. it will depend upon their IQ level, their level of understanding. کہیں یہ معذور کے حکم میں تو نہیں ہے, کہیں جو ہے وہ ذہنی طور پر کمزور کے حکم میں تو نہیں ہے. بہار شریعت پڑھیں تو اس میں کافی ٹرمز آتی ہیں نا. سو بیسیکلی وٹ آئی ووڈ ایڈوائز, اینڈ آبویسلی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا مسلمز اینڈ پیرنٹس, ڈو جنرلی گیٹ کنسرنڈ اباؤٹ دیٹ, ڈو دا رولز آف شریعہ اپلائی ٹو دم, اینڈ آئی کین ناٹ سے یس اور نو, بٹ دے نیڈ ٹو کنسلٹ ود دا مفتی, and the mufti will ultimately be able to decide, so that it actually removes that pressure on the parents. I have seen some parents whose children do have learning disabilities. They want their child to go to madrasa, but the mosque may not be accepting because they've got problems with that child.
They do not admit the fact that their child has got learning disabilities. ایسے بھی پیرنٹس موجود ہیں جو اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے, وہ ان کا کوئی کانشیس میں یہ چیز ایڈمٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتی کہ نہیں میرا بچہ تو نہیں ایسا. آپ اسے کیوں کہہ رہے ہیں کہ اسے لرننگ ڈسیبلٹی ہے؟ ہو سکتا ہے اسکول کے اندر اگر وہ کہیں کہ نا اس کو اسپیشل نیڈس کی ضرورت ہے, اسپیشل ٹیچر کی ضرورت ہے, اسپیشل اسسٹنس کی ضرورت ہے, یا مدرسے والے اگر کہیں تو اس پہ وہ ناراض ہو جاتے ہیں, اس پہ وہ غصہ کرتے ہیں کہ انہوں نے میرے بچے کو ہی کیوں اس طریقے سے اس کیٹیگری میں ڈالا ہے کہ وہ وائی. تو ہمیں آپ اس پہ کیا ان والدین کو یہ ایڈریس کریں گے؟ وٹ ول یو سے ٹو دوز پیرنٹس دیٹ شیل وی ہیو دس کریج ٹو ایڈمٹ دا فیکٹ؟
This is actually a psychological reaction. When a child is born, everyone's expectation is that they will be normal and they will actually grow and they will do such and such and such things. To begin with, you may not notice anything with the child until he reaches 4 or 5 years of age. And when this comes and hits them, then clearly for the parents, this is a very, you know, sad news, a tragic news. You know, the dreams that they've had, they're shattered to pieces. So one of the natural reaction to this is, I will deny, denial. Many times, you know, when me and you may develop an illness, serious illness, or there is a serious problem which I cannot address, I will deny it. That's what we call as a defense mechanism, that initially I want to save my brain from this emotional trauma and I will deny it. And by doing so, you are simply delaying this acceptance. Sure. But for the time being, you know, you're not actually emotionally distressed. So this denial is one of the problems that the parents may end up refusing. Eventually, they will accept it as the time goes by. But I guess, obviously, you know, it is a natural reaction to the parents. No, I don't think I think the doctor's got it wrong. We need more time. My child needs more help. He will be able to be normal and so forth. It is possible that he may have mild learning disability. And in this case, parents' perseverance can actually help this child. But I guess in moderate or severe learning disabilities, it may be a different story. So, in brief, obviously, I guess I can understand from parents' point of view because they will need a lot of psychological support as well.
ٹھیک ہے, ان کو بھی اس چیز کو اینڈ آف دا ڈے سلوئی سلوئی وہ سمجھ تو جاتے ہیں, اور سمجھنا بھی چاہیے تاکہ وہ بچوں پہ پریشر نہ کرے کہ بھائی آپ نے یہ کرنا ہی کرنا ہے.
دیکھو, جب تک اس کو سمجھیں گے نہیں, اس کو قبول نہیں کریں گے, تو آپ کے لیے جو ہے نا یہ بہت بڑا مسئلہ بنے گا. بچے کے لیے الگ ہوگا, آپ کے لیے الگ ہوگا, پھر خاندان والوں کو بھی یعنی کہ معاشرے کے دیگر جو ہے وہ لوگوں کو. ایون ان ویسٹرن کنٹریز ہیئر ان یو کے اینڈ یورپ, مینی پیپل اگین دے ول فائنڈ دس سم تھنگ ویری نیو, اینڈ دے ول فائنڈ اٹ ڈیفیکلٹ ٹو ایکسپٹ, وچ کوزز ا لاٹ آف پرابلمز فار دا ایکچوئل پیشنٹ, فار دا فیملی, فار دا سوسائٹی ایز ویل. اینڈ آئی تھنک, آئی مین, اف یو ہیو این انڈرسٹینڈنگ اینڈ اویئرنیس کہ پاکستان میں بھی جو ہمارے ویورز یا ایشین کنٹریز میں یا دیگر کنٹری میں جہاں میں اتنی ایجوکیشن نہیں ہے, کہ ہم سب کو اس حوالے سے اویئرنیس ہونی چاہیے, کیونکہ دین, ہمارے دین اسلام میں اخلاقیات کا بہت بڑا کردار ہے. اخلاقیات میں یہ بھی بات آتی ہے کہ آپ دوسرے کی پرابلم کو سمجھیں اور اس کو سپورٹ کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو اتنا پوچھتے جائیں اور نفرت کر دیں کہ اگلے کی بیچارے کی زندگی اجیرن ہو جائے.
May Allah bless and keep you safe.